ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदा यः आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेने ब्रह्म हृदाय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात्
जितना अधिक समय देंगे उतना अच्छा आनंद आएगा। धीमी साइकिल का रेस भी कभी कभी होता है ना।
जन्माद्यस्य यतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वरात् दे तरत चार्थ स्वभिज्ञ स्वराट यतोन्वया दे तरत चार्थ स्वभिज्ञ तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि तो सब पुरुष लोग एक साथ आगे से बोलें, बाकी लोग पीछे से बोलेंगे। सब लोग एक साथ पुरुष लोग जन्माद्याशयतो शार्थे स्वभि एक एक लाइन बोलिए, एक एक लाइन, एक लाइन बोल करके लुक जाइए, फिर पीछे से आवृत्ति होगी, फिर बोलिएगा। चालू कीजिए। जन्माद्याशयतोन्मयादितरत चार्थे स्वभि तेने अब माता जी लोग आगे से बोलें, प्रभु जी लोग पीछे से बोलेंगे एक एक लाइन। चार्थ स्वभिज्ञ स्वरा फिर से सब लोग साथ में हम भी बोलेंगे जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओम मेरे प्रभु, नमः, नमस्कार है भगवते भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेव, वसुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को। जन्म आदि, उत्पत्ति, पालन तथा संहार अस्य इस प्रकट ब्रह्मांड का, यतः जिससे अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरतः अप्रत्यक्ष रूप से, च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में अभिज्ञ पूर्णतया अवगत स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र तेने प्रदत्त ब्रह्म वैदिक ज्ञान हृदय हृदय की चेतना यह जो आदि कवये प्रथम जीव के लिए मोह्यन्ति मोहित होते हैं या जिनके विषय में सूर्य बड़े बड़े मुनि तथा देवता तेज अग्नि वारी जल मृदाम पृथ्वी यथा जिस प्रकार विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कारण यत्र जहाँ पर त्रिसर्ग सृष्टि के तीन गुण सृष्टिकारी शक्तियाँ अमृषा सत्यवत धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ श्वेन अपने से सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण त्यक्त कुहकम मोह को सत्यम सत्य को परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में अस्थल देह करके कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड
जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वता मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनका इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। तात्पर्य, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में की गई है। यहाँ पर श्री व्यासदेव बलपूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं और अन्य सभी देव रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंश या अंशांश हैं। श्री लजीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि पुरुष ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यथेष्ट व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। यदि भगवान किसी अन्य दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही है जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसके पुष्टि अर्जुन तथा नारद व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्णांश का सूचक है और भगवान के अन्य रूप जो वासुदेव से अभिन्न हैं इस ग्रंथ में सूचित किए गए हैं। वासुदेव नाम विशेष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। श्री कृष्ण का ध्यान तथा सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों द्वारा किया जाता है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत विशद व्याख्या लिखे हैं, लेकिन अब तो 25 मिनट समय है तो पूरे तात्पर्य को पढ़ करके व्याख्या करना कठिन कार्य है। हम लोग इस श्लोक के अनुवाद पर विचार करेंगे जैसे श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद दिए हैं और तात्पर्य से थोड़ा थोड़ा कुछ अंश ग्रहण करेंगे। कभी समय मिलेगा तो आगे इसको और विस्तार से हम लोग सुन सकते हैं। और जैसा पहले ही बतलाया गया, यह श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है। कोई भी ग्रंथकार कोई रचना करता है तो यह परंपरा है कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की जाती है। वैदिक सभ्यता यही है, कोई ग्रंथ की रचना करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं। इससे अभीष्ट की पूर्ति होती है और जो विघ्न होता है वह नष्ट हो जाता है। कोई भी कार्य है तो कुछ विघ्न की संभावना रहती है, मंगलाचरण करने से विघ्न समाप्त होता है और जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण की परंपरा है और श्रील व्यास देव भी मंगलाचरण कर रहे हैं। ये मंगलाचरण का क्या अर्थ है? मंगल आचरण, कुछ कृत्य करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो मंगल के लिए किया जाता है। और मंगलाचरण के कई एक रूप हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथ रचना में प्रायः भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करना अपने आप में सबसे बड़ा मंगल कृत्य है। भगवान के स्मरण से सब प्रकार के अलाय बलाय दूर हो जाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, तो स्मरण का बहुत महत्व है। तो यहाँ भी स्मरणात्मक मंगलाचरण किया जा रहा है, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, नमस्कार करते हैं, यह भी एक मंगलाचरण का प्रविधा है, विधा है। तो भगवान का स्मरण करने से सब विघ्न समाप्त हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः ज्येष्ठा मिन्दिविरस्याम हृदयस्थो जनार्दन। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में नील कमल के सदृश भगवान कृष्ण स्थित हैं, जो सारे लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं या सारे लोगों की याचना को पूर्ण करने वाले हैं, जनार्दन हैं, स्वाभाविक मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, तो कह रहे हैं कि हृदय में जनार्दन को धारण किया जाए, उनका स्मरण किया जाए, तो लाभ तेसा उस व्यक्ति को लाभ होगा, जयस तेसा उसका विजय होगा, कुतस तेसम पराभव जो भगवान का स्मरण करेगा, जनार्दन का स्मरण करेगा, हृदय में जनार्दन को धारण करेगा, तो पराभव कैसे होगा? पराभव कभी नहीं हो सकता। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां अमंगलम्। जो व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को धारण करता है, सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां अमंगलम्। तो किसी भी समय किसी भी कार्य में उसका अमंगल नहीं हो सकता। जैसा हृदिष्ठो भगवान मंगलाय तनाम हरि, भगवान मंगल मूर्ति है, तो उनको जब हृदय में धारण करते हैं तो अमंगल का प्रश्न ही नहीं है, सब जगह मंगल होगा। तो इसी सिद्धांत के अनुसार ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, इष्ट का स्मरण किया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में व्यास देव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। तो इस श्लोक में मूल वाक्य है परम धीमहि, आप बोर्ड पर देख सकते हैं लास्ट में शब्द आया परम धीमहि। धीमहि मतलब ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? परम, पर का ध्यान कर रहे हैं, परम मतलब परमेश्वर, हम परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, हम परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। और उसके पहले जो इन्वोकेशन है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें पहले कहा जा चुका है कि हम भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहे हैं। वासुदेव का अर्थ है जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी वसुदेव के पुत्र को हम नमस्कार कर रहे हैं। उनका परिचय दिया गया है कि भगवते वे भगवान हैं, सदैश्वर्य पूर्ण हैं। और जो मंगलाचरण का मूल श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि परम धीमहि, पहले इन्वोकेशन में जिससे भगवान का उल्लेख किए हैं उसी को इसमें कह रहे हैं कि परम धीमहि, मैं परमेश्वर का ध्यान कर रहा हूँ, जो सबसे बड़े ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। थोड़ा संस्कृत पर विचार करेंगे तो धीमहि एक वचन में नहीं है या बहुवचन में है, भी प्रश्न होगा कि व्यासदेव ग्रंथ लिख रहे हैं तो बहुवचन का क्यों प्रयोग किया है। ऐसे श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि शिष्याभिप्रायण, व्यासदेव ग्रंथ रचना कर रहे हैं तो अपने शिष्यों को भी आत्मसात करके मंगलाचरण कर रहे हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। और मूल वाक्य यही है कि परम धीमहि, हम आदि पुरुष का परमेश्वर का ध्यान कर रहा। और नमस्कार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो प्रायः उस तत्व का, अपने इष्ट का, भगवान का निरूपण भी करते हैं और उसके स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। और किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए दो पद्धति का उपयोग किया जाता है, दो साधन का उपयोग किया जाता है। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। यद्यपि न्याय शास्त्र में इसका दूसरे ढंग से परिभाषा दी गई है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सीधा सीधा परिभाषा दे रहे हैं। आकृति प्रतीक, आकृति प्रकृति स्वरूप, स्वरूप लक्षण, या पाठ भेद है, आकृति प्रकृति यही स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण का क्या अर्थ हुआ? किसी के आकृति को, नक्शा को बतला दीजिए और उसके प्रकृति को, नेचर को बतला दीजिए, तो इसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण, और उसके कार्य को कहते हैं वह तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण सदैव प्रकट नहीं रहता है, लेकिन स्वरूप लक्षण कभी अभियुज्य नहीं होता है, कभी वियुज्य नहीं होता है, सदा रहता है। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति है तो उसके आकृति के विषय में बतला दीजिए, गोरे रंग का है, 5 फुट का है, 5 फुट 8 इंच का है, और वह शांत प्रकृति का है, पर इसको स्वरूप लक्षण कहेंगे। लेकिन वो लक्ष्यदार भाषण करता है और कुछ कहिए तो इसको तटस्थ लक्षण कहेंगे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति देखे और वो विद्वान कहीं दूसरा कार्य कर रहा है, तब तो केवल तटस्थ लक्षण पर चले तो उसको विद्वान मानेगा ही नहीं, पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि हमेशा तो प्रवचन ही नहीं कर रहा है ना। तो किसी भी वस्तु का परिचय देने के लिए दो पद्धति अपनाया जाता है, उसके स्वरूप लक्षण देते हैं और तटस्थ लक्षण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुनि लोग इन्हीं दो लक्षणों से किसी को समझ जाते हैं। तो व्यास देव भी परमेश्वर का, परम का स्वरूप लक्षण का वर्णन कर रहे हैं और तटस्थ लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। और स्वरूप लक्षण है सत्यम, परम धीम ही, भाई वो परम कैसा है तो कह रहे हैं कि सत्यम, तो वह सत्य है, उसका स्वरूप सत्य है, वो सत्यात्मक है। सत्य का क्या अर्थ होता है? जिसकी त्रिकाल में सत्ता है, ऐसा कोई समय नहीं है जब उसकी स्थिति नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। ना सतो विद्यते धाव, आप लोग गीता में पढ़ते हैं, तो जो सत्य पदार्थ है उसका अभाव नहीं होता है, वो सदा विद्यमान रहता है। तो स्वरूप लक्षण दे रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परमेश्वर का स्वरूप लक्षण है कि वो सत्य है। वे सत्य कहने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सत्य होता है, तो इसे शब्द को देवता लोग गर्भ स्तुति में, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 2वें अध्याय में गर्भ स्तुति प्रसिद्ध है। देवता लोग भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋतसत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। और भगवान को कह रहे हैं कि आप सत्यात्मक हैं। सत्यात्मक इस शब्द को समझना चाहिए, आत्मक शब्द का प्रयोग करते हैं बाहर भीतर जो सब जगह स्थित है उसको सत्यात्मक कहते हैं, उन्हें आत्मक शब्द से व्यक्त करते हैं। जैसे मृदात्मक है, घड़ा मृदात्मक है, और घड़ा मिट्टी से ही बना है और उसको मृदात्मक कहते हैं। तो भगवान का परिचय दे रहे हैं कि वे सत्यात्मक हैं। सत्यव्रतम, उनका संकल्प सत्य है,
सत्य परम, उनके प्राप्ति का साधन सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, वे तीनों काल में सत्य है। और सत्य से जो निम इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि पंच भौतिक पदार्थ है, इसके योनि वही हैं, उन्हीं से ये प्रकट हुआ है। और निहिते च सत्य, परमात्मा रूप से इस पंचभौतिक शरीर में या ब्रह्मांड में भी वे हैं। और सत्य से सत्यम, सबका नाश हो जाएगा फिर भी वे रहेंगे। और कह रहे हैं कि भाई सत्य और मधुर भाषण के प्रवर्तक हैं, तो सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपद्य, वे सब तरह से सत्य हैं। वे एक प्रश्न होगा कि जब परमेश्वर का ही स्तुति कर रहे हैं, उन्हीं का ध्यान करना है, तो सीधे कृष्ण शब्द क्यों नहीं दे रहे हैं? और सत्य स्वरूप से स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए इसी नाम को चुने। भगवान का नाम भी एक सत्य है। महाभारत में कहा गया है कि सत्य प्रतिष्ठितः कृष्ण, कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं, और सत्यम कृष्णे प्रतिष्ठितम, और कृष्ण में सत्य प्रतिष्ठित है। और कह रहे हैं कि सत्यम प्रतिष्ठितः कृष्ण, सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम, सत्यात् सत्यम च गोविंद, वे सत्य के भी परम सत्य हैं, इसलिए उनका नाम भी एक सत्य है। तो भगवान का एक नाम भी सत्य है, क्योंकि अब भगवान को सत्य कह रहे हैं। तो एक प्रश्न होगा कि जितने भगवत स्वरूप हैं, तो ये सब सत्य हैं, सबकी त्रिकाल में अबाधित स्थिति है, तो कैसे हम लोग स्वीकार करें कि भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं? तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि परम धीमहि, जो सत्यों के भी मूल हैं, जितने भगवत स्वरूप हैं उनके भी जो मूल हैं, तो उनका मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसी से कह रहे हैं कि सत्यम धीमहि, या कभी कभी इसका अन्वय किया जाता है कि परम सत्यम धीमहि, जो परम सत्य हैं, सत्य के भी सत्य हैं, तो उनका मैं ध्यान कर रहा। तो इस प्रकार इस अंश से सत्य का उल्लेख करके, इस शब्द का उल्लेख करके, भगवान के नाम का उल्लेख करके व्यासदेव कृष्ण के स्वरूप लक्षण का उल्लेख कर रहे हैं, और कई एक शब्दों के द्वारा तटस्थ लक्षण का उल्लेख कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि जन्मादि अस्य यत, एक तटस्थ लक्षण दे रहे हैं कि अस्य मतलब ये जो प्रपंच दिख रहा है, जो दृश्यमान है, तो अस्य जन्मादि यत, जिनसे इसका जन्म आदि होता है। आदि मतलब पालन और नाश, इसको भी ग्रहण कर लिया जाए। तो तटस्थ लक्षण के द्वारा कृष्ण का परिचय दे रहे हैं कि इस संसार का जन्म जहाँ से होता है। अब कह रहे हैं कि इतरत अन्वयात इतरतश्च, भगवान का परिचय दे रहे हैं कि इस संसार में जिसकी भी सत्ता है, जिसका हम अपने इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो अन्वयात भगवान इसमें प्रविष्ट हुए हैं, भगवान का प्रत्यक्ष संबंध है, इसी से कोई भी विषय हमारे इंद्रियों का विषय बनता है। भगवान सृष्टि करके इसमें प्रवेश न करें तो शायद हम लोग के इंद्रियों का विषय वो नहीं बनेगा। तो अनुयात सृष्टानुविश्य, भगवान ही एक तरह से इस वस्तु के रूप से संबंधित हुए। स्पष्ट शब्द में कहा जाए तो भगवान ही इस वस्तु के रूप में परिणत हुए हैं। भगवान इस रूप में परिणत न हो तो हम लोग अनुभव नहीं कर सकते। तो हम जो भी देख रहे हैं, दीवार देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, घटपट कुछ भी देख रहे हैं, तो अन्वयात ये भगवान का प्रत्यक्ष संबंध है। भगवान ही
इस रूप में परिणत हुए हैं, इसी से हम अनुभव कर रहे हैं। भगवान परिणत न हो तो हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसी बात को कह रहे हैं कि इतरत, भगवान का जिससे संबंध हो गया, प्रकट उसमें प्रवेश किए तो उसका तो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, और जहाँ प्रवेश नहीं किए, संबंध नहीं किए, उसका कोई अनुभव ही नहीं है। जैसे ख पुष्प, आकाश कुसुम, ये शब्द तो सुनते हैं लेकिन किसी को अनुभव हुआ है वो कैसा है? पर इसका कारण यह है कि इससे भगवान संबंध नहीं जोड़े। तो जब तक भगवान प्रकट संबंध नहीं जोड़ते हैं तब तक वह चीज़ हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बनता। तो भगवान ही उपादान कारण है, जिसके उपादान बने उसका अनुभव करते हैं, जिसका उपादान नहीं बने उसका अनुभव नहीं करते। और कह रहे हैं कि च, चकार से अर्थ है कि वे निमित्त कारण भी है। किसी चीज की रचना करते हैं तो उसके दो कारण होते हैं, एक को उपादान कारण कहते हैं, एक को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कोई कुम्हार है तो कई एक बर्तन बना रहा है तो मिट्टी हुआ उपादान कारण, मिट्टी उस बर्तन के रूप में परिणत हो जाता है, और उसका जो चाक है या कुम्हार है उसको निमित्त कारण कहेंगे। तो भगवान इस संसार के उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। उदाहरण दिया गया है कि पूर्ण नाभि इव, जैसे रेशम का कीड़ा है तो अलग से कोई सामग्री नहीं लेता है, वो भी रचना करता है, कुम्हार भी रचना करता है, लेकिन कुम्हार कहीं से माटी लाता है तब रचना करता है, लेकिन रेशम का कीड़ा कहीं से कोई वस्तु नहीं लेता, अपने मुख से ही निकाल देता है। तो जैसे रेशम का कीड़ा रचना करता है वही करने वाला भी है और सामग्री भी उसी से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार के रचना के दोनों कारण हैं, उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं। और बहुत विशद विषय है, प्रश्न होगा कि भगवान जब उपादान बन गए तो भगवान घट जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन भगवान की यही विशेषता है कि उनमें ह्रास नहीं होता। कोई तर्क करेगा ऐसे कैसे होगा, अरे वो तो भगवान हैं, दिव्य हैं। कभी कभी देखा जाता है कि प्राकृत वस्तु भी है और वह भी सृष्टि कर देते, उसमें कोई ह्रास नहीं है। जैसे सेमंतक मणि है तो सोना पैदा करती जाती है लेकिन ज्यों के त्यों है। तो जब प्राकृत वस्तु में भी यह शक्ति है तो भगवान के लिए क्या आश्चर्य है। लेकिन एक चीज है ध्यान देने की है कि जैसे रेशम का कीड़ा तो रचना करता है लेकिन उसी में बंध जाता है, लेकिन भगवान उपादान कारण है और निमित्त कारण है, लेकिन इस सृष्टि से एकदम परे है। गजेंद्र जी कहते हैं यस्मिन्निदम यतश्चेदम जेनेदम या इदम स्वयं, यह संसार जिसमें है, जिससे है, जिसके द्वारा है, अरे जो स्वयं संसार है लेकिन फिर भी परस्मा इससे पर है, और इसका जो कारण है सूक्ष्म चीज उससे भी परे है। तो इसी से भगवान को अचिंत्य कहा जाता है। तो भगवान ये उपादान कारण है और निमित्त कारण है। और एक चीज करें कि अभिज्ञ, जो भी सृष्टि है उनको पूर्ण जानकारी है, यद्यपि भगवान इस सृष्टि में हाथ नहीं लगाए हैं लेकिन एक एक चीज का ज्ञान है। फिर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई चीफ इंजीनियर है, अपने ऑफिस में रहता है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, बांध बन रहा है, लेकिन उसको एक एक चीज की जानकारी है क्योंकि नक्शा वो दिया है, नक्शा का उसको ज्ञान है। तो उसी तरह भगवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन अभिज्ञ पूरा पूरा जानकारी रखते हैं, और स्वराट उनको किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। और भगवान के तटस्थ लक्षण को कह रहे हैं कि तेने ब्रह्म हृदय याद गवय, भगवान अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिए। उनको किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं बुलाना पड़ा, कोचिंग सेंटर में नहीं बुलाया, संकल्प से ही भगवान ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिए। और पूरा पूरा ज्ञान दे दिए। जावन नहम यथाभावम यदरूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रह। भगवान अपने संकल्प से ही कहेगी भगवान के जो यत्ता है जावन नहम जितना में उनका विस्तार है जावन नहम यथाभाव भगवान की जैसी सत्ता है यदरूप गुण कर्म का जैसा भगवान का रूप है कर्म है लीला है और भगवान आशीर्वाद दे वैसा ही ज्ञान हो जाए। तो ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिए और कह रहे हैं कि मोह्यंत यत सूर्य भगवान के एक विशेषता को बतला रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी भगवान के विषय में मोहित हो जाते हैं। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमय जैसे अस्थल पर पानी का भ्रम होता है जैसे मरुभूमि में जलाशय का भ्रम होता है या कभी कभी पानी में पत्थर का भ्रम होता है संगमरमर का भ्रम होता है वैसे भगवान के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी और देवता भी मोहित हो जाते हैं। इंद्र के घटना को आप समझ सकते हैं इंद्र कितना मोहित हो गए सीधे भगवान को कह रहे हैं कि मर्त्यम उपासित्य नंद बाबा पर क्रोध व्यक्त करें कि एक लड़का का आश्रय लेकर के तुम हमारी पूजा छोड़ दिया वो 6-7 साल का लड़का अरे जिसके मरण के लिए मर्त कह रहे हैं वे कह रहे हैं कि जिसके मृत्यु की चिंता में पड़ करके ये ब्रजवासी गोकुल छोड़ करके वृंदावन में आ गए वो मर्त्य है उसके मरने की चिंता है उसका आश्रय लेकर के हमारा पूजा छोड़ दिए तो बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे जलाशय मरुभूमि में जलाशय का भ्रम हो जाता है कहाँ भगवान सच्चिदानंदमय है प्रकृति से परे है इंद्र को भ्रम हो गया कि सामान्य पुरुष है और कह रहे हैं कि यत्र त्रिसर्गो मृषा ये तो भगवान का संपर्क है तो हम लोग एकदम दौड़ रहे हैं बैठ रहे हैं खेल रहे हैं क्या क्या कार्य कर रहे हैं ऐसा लगता है कि एकदम वास्तविक है अमृषा है भगवान न रहे तो ये सब नहीं क्रिया हो सकती। अब सृष्टि का वर्णन पढ़ेंगे तो ब्रह्मांड की रचना हो गई देवता लोग भी प्रविष्ट हो गए लेकिन कोई क्रिया नहीं थी। स्वक्रिया अनीसा सारे देवता लोग प्रविष्ट हो करके भी कोई क्रिया नहीं कर सके तब प्रांजलय हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किए भगवान जब उसमें प्रवेश किए तब क्रिया शक्ति आई। तो ये वास्तविक लग रहा है दिख रहा है तो भगवान के संपर्क से भगवान है इसलिए ये वास्तविक लग रहा है नहीं तो माटी के धोंधा जैसा कुछ दिखता क्रिया शक्ति नहीं होती। और कह रहे हैं कि धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम भगवान के एक कार्य को और बतला रहे हैं कि भगवान का ज्ञान इतना उन्नत है चित शक्ति इतनी उन्नत है कि माया के प्रभाव को सदा दूर रखते हैं। तो इस प्रकार व्यास देव यह स्तुति कर रहे हैं मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण के क्रम में ही भगवान के वर्णन भगवान का वर्णन कर रहे हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से। तो सत्य भगवान का स्वरूप लक्षण है और सृष्टि ब्रह्मा को ज्ञान देना माया को दूर रखना ये सब तटस्थ लक्षण है। तो इस प्रकार इन लक्षणों का उल्लेख करके व्यासदेव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि हरे कृष्ण।